अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ हूँ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला।
ये आवाज है मधुशाला जैसी कालजयी रचना के रचयिता हरिवंश राय बच्चन की, जिनके बारे में मशहूर था कि उनके काव्य में भावों को शब्दों के बोझ तले घुटना नहीं पड़ता, जिंदगी के कड़वे सच और उलझे हुए विचारों को आसान शब्दों में कह देना बच्चन की खासियत थी। शायद यही वजह है कि हिंदी साहित्य की तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली रचनाओं में मधुबाला की गिनती होती है।
कितने साकी अपनाए अपना काम खत्म कर दूर गए, और कितने पीने वाले आए, किंतु वही है मधुशाला।
1933 से शुरू हुई हरिवंश राय बच्चन की काव्य यात्रा 60 के दशक तक जारी रही। प्रख्यात साहित्यकार और धर्मयुग के संपादक रहे धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती बताती हैं।
हमारे पिताजी पढ़ाते थे, अध्यापक थे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के, और वो कवि सम्मेलन कराया करते थे हर साल। उस कवि सम्मेलन में बच्चन जी जरूर आते थे और जरूर बुलाए जाते थे, और वो सबसे अंत में सुनाते थे। तो हम क्या करते थे, पिताजी संयोजक थे तो हमको पीछे स्टेज के ऊपर बैठने को पीछे से मिल जाता था। हम अपना कंबल वगैरह लेके साथ में जाते थे, सर्दियों के दिन होते थे, हम पिताजी से कहते थे हमें नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, और जब बच्चन जी सुनाने लगेंगे तब आप हमको प्लीज उठा दीजिएगा। विश्वास मानो आप ये कि ना तो बच्चन जी सुनाते थकते थे, ना जनता सुनते थकती थी, और उनकी मधुशाला तो लेकर के कितने घंटों तक सिर्फ मधुशाला वंस मोर होता रहता, और वो सुनाते जाते, और सवेरे होते मैंने देखी है अपनी आंखों से।
कम लोगों को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और मशहूर अंग्रेजी कवि W.B. येट्स पर कैम्ब्रिज में शोध करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की गिनती हिंदी के उभरते हुए कवियों में होने लगी थी। हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन ने BBC से बात करते हुए कहा था,
डैड कभी भी लिखने के मूड में होते हैं तो बाहरी जो चीजें हैं उन सबसे वो एकदम अलग कट जाते हैं, यानी घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बारे में वो कभी सोचते नहीं हैं, और हम लोग समझ जाते हैं कि अब उनका कुछ लिखने का मूड आया है, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिल्ली में तो ये था कि उनका जो कमरा था वो अंदर से वो बंद कर लेते थे, और बाहर दो झंडे किस्म की चीज़ें लटका देते थे कि भाई अब मैं लिख रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यानी अगर एक झंडा लटका हो तो इसका मतलब हुआ कि भाई अंदर आना जाना हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही जरूरी हो, अगर दो झंडे लटके हो इसका मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मना है। बैठते बैठते थक जाते थे तो वो खड़े हो जाते थे और खड़े होकर लिखते थे।
इलाहाबाद के दिनों में हरिवंश राय बच्चन की सबसे अधिक निकटता शमशेर बहादुर सिंह, पंडित नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुमित्रा नंदन पंत के साथ हुआ करती थी। अपनी आत्मकथा नीर का निर्माण फिर में बच्चन पंत और निराला का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
पंत और निराला एक दूसरे से जितने एलर्जिक थे उसका अनुभव पहली बार मुझे हुआ। निराला जी उन दिनों पहलवानी मुद्रा में रहते थे, पांव में पंजाबी जूता, कमर में तहमद, बदन पर लंबा ढीला कुर्ता और सिर पर पतली साफी, कहीं अखाड़ा लौटकर चेहरे और मुंडे सिर पर मिट्टी भी पोत आते थे। एक दिन तो निराला जी मेरे ड्रॉइंग रूम में आधमके और उन्होंने पंत जी को कुश्ती के लिए ललकारा। वो बोले, मैं निराला नहीं हूँ, मुत्तन खां हूँ, टुट्टन खां का बेटा। बोलते बोलते उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपनी साफी को अपनी कमर पर लंगोट के तौर पर लपेट लिया। फिर वो दंड बैठक कर ताल ठोंकने लगे। जब उन्हें पंत जी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो निराला ने मेरी तरफ देखकर कहा, वो नहीं तो तुम ही सही। मैंने कहा, मैं आपका पैर छूने लायक भी नहीं हूँ, कुश्ती क्या लड़ूंगा आपसे। इस पर निराला थोड़े ठंडे हुए। मैंने कहा, आपके लिए चाय बनवाई जाए। निराला बोले, मुझे चाय के लिए तो बुलाया नहीं गया, हाँ पानी ज़रूर पी सकता हूँ, पीतल के गिलास में मंगवाना। पानी आते ही उन्होंने उसके कुछ घूंट लिए और घर से बाहर चले गए।
हरिवंश राय बच्चन की 1941 में तेजी सूरी से शादी हुई थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। तेजी ने एक बार बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उस पहली मुलाकात को याद किया था।
जब मैंने बच्चन जी को इतने साल पहले पहली बार मिली तो मुझे एक कमरे में जब वो आए तो एक आदमी दुबला पतला निराशा की मूर्ति जैसे मेरे सामने आई। कुछ स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है तो मैं सोचती हूँ मुझ में अधिक है। अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरा उस वक्त ऐसा मन आया और मैं उनकी तरफ जो खिंची तो उनकी ये निराशामय मूर्ति जो थी मुझे ज्यादा उनकी तरफ पास आने के कारण बनी। मुझे आज तक नहीं समझ आती कि मैं पंजाब में रहने वाली और एक ऐसे, ठीक है आजाद परिवार जरूर था लेकिन मेरे पिताजी कोई ऐसे मुझे आजाद नहीं उन्होंने रखा था कि मैं जहां तहां घूम सकूं मिल सकूं। और जब मैं इतने साल पहले की बात करती हूं तो वो युग ही दूसरा था। क्यों मैं वहां, कैसे मैं वहां बरेली उत्तर प्रदेश के एक शहर में पहुंची जहां पे हमारे मित्र लोग थे। और मैं सोचती हूँ कि नियति ने कुछ मेरे लिए समझ कर ही मुझे वहां बुलाया।
पुष्पा भारती के मन में हरिवंश राय बच्चन का सम्मान उस समय आरंभ हुआ जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की छात्र हुआ करती थी।
बच्चन जी को देखने की बड़ी लालसा थी लेकिन बच्चन जी दिखाई ही ना दे समझ में नहीं आवे कि क्या बात है। फिर हम लोगों ने पता लगाया कि उनके क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है। अब बच्चन जी जब नहीं दिखाई दिए तो हम लोगों ने ये किया कि अपने बॉब पिन निकाले, सेफ्टी पिन निकाले और हम लोगों ने उनकी टायर पंचर कर दिए। वो साहब मोटर पर आते थे, कहा अब तो बच्चन जी आएंगे देखेंगे पंचर हो रहा है तो पहले तो जरा उसको झांका झांकी करेंगे फिर जाएंगे किसी को बोलेंगे। बाद में हम देखते हैं कि आए बच्चन जी और गाड़ी में बैठे और सर से निकल गए। तो कहा ये क्या हुआ, तो पंचर नहीं देखा। तो साहब हम लोग को पता भी नहीं चला था, उन्होंने किसी को बोल दिया होगा, कोई उनका पंचर बनवा लाया होगा और उनकी गाड़ी तैयार थी, वो चले गए।
पुष्पा भारती ने ही 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मुंबई के अपने फ्लैट पर अपनी रचनाएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, जहां धर्मवीर भारती ने उनकी कुछ रचनाएं छाटी और उन्होंने उनका सस्वर पाठ किया।
बच्चन जी की ये शाम अद्भुत इसलिए भी थी कि इसमें अमिताभ भी आया था और अमिताभ का तब तक बहुत ज्यादा नाम तो नहीं हुआ था लेकिन लोग पहचानने लगे थे। वो थोड़ी देर तो बैठा बैठा सुनता रहा, बाद को हमने देखा कि वो चुपचाप उठ करके उस मुंडेर पर चला गया था, हाथ में कॉफी का प्याला ले लिया और मुंडेर पर जाके खड़ा होके बस समुंदर देखता रहा था अपने में डूबा हुआ। और वहीं हम लोगों ने एक छोटी सी अच्छा सा गद्दा बिछाया था, छोटी सी मेज लगा दी थी, बच्चन जी उस मेज के पास गद्दे पर बैठे थे गाँव तकिया लगाए हुए और भारती जी बगल में जमीन पर उनके पास बैठे थे और उनकी किताबों की गड्डी अपने पास रख ली थी, उसमें चिटें लगा ली थी कि उनसे क्या क्या फरमाइश करनी है। एक एक चिट उठाते जाते थे और बच्चन जी के आगे किताब कर देते थे। आप बिल्कुल भी विश्वास करिए कि वैसा कविता पाठ हमने तो कभी सुना ही नहीं है।
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे बरनु बरनु वी श्रृंखल चरण चरणु भरुमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए।
इसी तरह का एक मौका भारत के विदेश सचिव रहे महाराज कृष्ण रसगोत्रा को भी मिला था। उस समय वो नेपाल में तैनात थे और हरिवंश राय बच्चन सपरिवार उनके साथ काठमांडू में ठहरे थे।
एक तो बच्चन जी का रिसाइटल निशा निमंत्रण आपने सुना होगा, 9:30-9:10 बजे उन्होंने शुरू किया और कुछ इंटरवल करते करते 100 कविताएं हैं उसमें, सब उन्होंने रिसाइट की और एक ऐसा वो तांता बद्धा एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ को उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अंग्रेजी में कहूँ कि इट वॉज ए नाइट ऑफ कथारसिस फॉर बच्चन जी, फॉर मी, हिज अदर फ्रेंड एंड फॉर द नेपलीज हु वर पार्टिसिपेंट्स इन दिस ओकेजन। ये अमिताभ और बंटी छोटे जो हैं अजिताभ, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे को हम खिलाते वाते थे, वहाँ घुमाते थे फिर आते थे। तेजी तो कमाल की औरत थी, वो क्या उनकी आवाज़, जो बच्चन जी का रिसाइटल उनकी जुबान से जो हमने सुने हैं वो ऐसा हृदय में एक पैदा करते थे भाव, और खूबसूरत लेडी थी।
रात यादी हो गई है जागता मैं आंख फाड़े हाय सुदियों के सहारे, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में सो गई है।
हरिवंश राय बच्चन को तरह तरह की कलम जमा करने का शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। बच्चन अपनी आत्मकथा दशद्वार से सोपान तक में लिखते हैं।
कलमों का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। हर कलम का अपना व्यक्तित्व होता है। किसी कलम से कविता अच्छी लिखी जा सकती है, किसी कलम से गद्य। कोई कलम प्रेम पत्र लिखने के लिए अच्छा होता है, तो कोई अंग्रेजी लिखने के लिए, कोई हिंदी लिखने के लिए, कोई नीली स्याही के उपयुक्त, कोई काली के, कोई ज़्यादा लिखने के लिए, तो कोई सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए। मेरे पास एक ऐसा कलम है जिसमें छोटा सा बल्ब लगा है। लिखते लिखते बिजली चली जाए तो आप स्विच दबाइए, बल्ब जल उठेगा। मेरी टेबल पर 10-12 तरह के कलम रहते हैं। मैं समय समय पर कलमों की सफाई भी करता हूँ और उनकी डॉक्टरी भी। कोई अच्छा कलम देखकर उसे किसी न किसी तरह हथियाने की मेरे मन में ललक उठती है। मोल और मांगे से न मिले तो चुराने में भी मैं संकोच न करूँगा। मेरे बेटे जब विदेश जाते हैं तो पूछते हैं, आपके लिए क्या लाएं? मैं कहता हूँ, कोई नए तरह का कलम निकला हो तो ले आना, और वो ले आते हैं। मेरे पास कलमों का अच्छा भंडार है और मैं उसे कंजूस के धन की तरह सीता हूँ।
कवि बच्चन ने मधुशाला के बराबर ही नाम कमाया 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखकर। धर्मवीर भारती ने उसके बारे में एक बार कहा था कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी और साहस से पहले कभी नहीं कहा गया।
अगर मुझसे कहो कि अपने पसंद की तुम 3 किताबों के नाम लो, तो पहली किताब क्या भूलू क्या याद करो? ये केवल आत्मकथा नहीं है, उस समय का भारत है, उस समय की आर्थिक व्यवस्था है, उस समय के मानव मूल्य है, उस समय के प्रेम को और विविधताओं को लेकर के जो विचारधाराएं थी, जो हमारे पराधीन भारत में जो गलत प्रथाएं चलती थी, हर चीज का वर्णन है। आदमियों के बीच में रिश्ते कैसे होते थे मनुष्यों के बीच में, ये सारी बातें हमें पूरी तरीके से समझ में आती हैं। हम कोई इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो ये जो चीज है, और ऊपर से जो अपने जीवन की जो बातें करते हैं इतनी सीधी और सच्ची कि हम एक एक दृश्य देखता हुआ चलते हैं उसका।
हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के 4 खंड लिखने में लगभग 1 दशक का समय लगाया। उनके बेटे अमिताभ बच्चन उसी समय का एक दिलचस्प संस्मरण सुनाते हैं।
जब वो दिल्ली में थे, मैं बंबई में था, 2-3 दिनों के लिए मैं दिल्ली गया। सर्दी का मौसम था और बच्चन जी शायद नीड़ का निर्माण के ऊपर वो लिख रहे थे। मैं उनके कमरे में गया और मैंने देखा कि वो दाहिने हाथ से लिख रहे हैं और उनका जो बायां हाथ है वो बगल में एक गर्म पानी की एक चिलमची है, उसमें गर्म पानी रखा है और बायां हाथ जो है वो गर्म पानी में पड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आपके बाएं हाथ में तकलीफ है? कहने लगे, नहीं, तकलीफ तो मेरे दाहिने हाथ में है। लेकिन पहले क्या था कि जब मुझे तकलीफ होती थी तो उनके पास एक हीटर था, तो 2-3 लाइन लिखते थे, फिर वो हीटर से हाथ गर्म करते थे, दर्द जब कम हो जाता था फिर वो कलम उठाते थे और लिखना शुरू करते थे। तो मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि दर्द जो है वो दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ में है। अच्छा। यानी मेंटली इसे ट्रांसफर कर दिया और कहा कि मैंने, मेरा दर्द जो है वो मैंने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ट्रांसफर कर दिया और मेरे बाएं हाथ में सचमुच दरअसल दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने बाएं हाथ को चिलमची में रखा हुआ है और उसको आराम पहुंच रहा है और मेरा दाहिना हाथ ठीक से काम कर रहा है।
1976 में हरिवंश राय बच्चन को भारत के 3रे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उस समय एक दिलचस्प घटना घटी। हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं,
पद्म भूषण अलंकरण समारोह देखने के लिए मैं अपने परिवार के 2 सदस्यों को ला सकता था। अमिताभ और अजिताभ दोनों ने चलने की इच्छा प्रकट की। अमिताभ ने तय किया कि हम तीनों बंद गले का काला कोट और पैंट पहनकर वहां जाएं। दर्जी बुलाकर तीनों के लिए काले सूट सिलने का ऑर्डर दे दिया गया और सूट सिलकर आ भी गए। हमें जिस दिन बम्बई से आना था उसी दिन रमू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए अजिताभ ने बम्बई में ही रुकना ठीक समझा। जब समारोह में जाने का वक्त आया तो मैं अपना सूट पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ। अमिताभ ने जब अपना सूट पहना तो वो छोटा पड़ गया। अब सब आश्चर्यचकित। हुआ ये कि हमारी पैकिंग जया ने की थी, वो थोड़ी लापरवाह हैं। सूट सब काले एक तरह के थे, उसने मेरा सूट तो ठीक रखा लेकिन अमिताभ के सूट की जगह अजिताभ का सूट रख दिया था। अमिताभ के पास दूसरे कपड़े नहीं, जया पर बहुत बिगड़े, लेकिन बिगड़ने से उस समय क्या हासिल होना था। उन्हें एक बात सूझी, उन्होंने फ़ोन कर राजीव गांधी से उनका एक चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और शॉल मंगवाई। शायद पहली बार उन्होंने ये पोशाक पहनी और वो भी उन पर खूब फबी। अलंकरण समारोह के बाद स्वागत समारोह के दौरान राजीव अमिताभ को छेड़ते रहे, कह दूं सबसे कि शॉल मेरी है।
जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, ओ जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है, ओ जितना ही जो रसिकू से है उतनी रसमय मधुशाला।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।